नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। श्री पुतिन शीघ्र ही भारत आएंगे। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कहा, शपथ पत्र पर शिकायत दर्ज कराएं या फिर झूठ फैलाना बंद करें। कश्मीर के अनंतनाग रेलवे स्टेशन से माल परिवहन सेवा शुरू। भारत में चिकित्सा पर्यटन में वृद्धि। जनवरी से अप्रैल तक उपचार के लिए 1,31,000 से अधिक विदेशी आए। और 5 भारतीय मुक्केबाज बैंकॉक में अंडर-19 एशियाई चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने अपनी ब्राजील यात्रा का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने बातचीत के क्रम में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल मॉस्को स्थित क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इससे पहले श्री डोभाल ने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगू के साथ भेंट की। इस अवसर पर श्री डोभाल ने कहा कि भारत का रूस के साथ एक विशेष और दीर्घकालिक संबंध है और वो इस संबंध को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय और बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई। सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शीघ्र ही भारत आएंगे।
We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. These summit meetings have always been the watershed points. They have always given a new direction to our relations. So I do hope that our this meeting at this point of time will give us some new ideas.
निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोपों का खंडन किया है। फैक्ट चेक के आधार पर इन आरोपों को भ्रामक पाया गया है। आयोग ने कहा कि अगर श्री राहुल गांधी को लगता है कि वे जो कुछ कर रहे हैं वो सही है तो उन्हें नियमों के अनुसार घोषणा पत्र अथवा शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिए। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि अगर लोकसभा में विपक्ष के नेता को अपनी बातों पर विश्वास नहीं है तो उन्हें बेतुके निष्कर्ष निकालना और देशवासियों को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए। उधर भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग की निष्ठा पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। कल नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब श्री राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाए हैं। श्री पात्रा ने कहा कि श्री गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता उन राज्यों में आयोग की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाते जहां कांग्रेस ने चुनाव जीते हैं।
You do not have credibility. You lack credibility. Your oath has no meaning. Your words have no meaning. That's the reason as to why you have to give an affidavit to the election commission. जो आपसे मांगा गया है वो देश का संविधान है। संविधान के अनुरूप लिखित रूप में दीजिए और जांच करवाइए, तभी जाके असलियत सामने आपकी आएगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में वैश्विक स्तर की सड़क और परिवहन अवसंरचना का निर्माण हो रहा है जिससे यात्रा में लगने वाले समय में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। श्री गडकरी ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारतीय निर्माण उपकरण निर्माता संघ के 75वें वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब निर्माण उपकरण उद्योग में जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त कर चुका है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र के हितों से समझौता करने के किसी भी दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगा। नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार का मानना है कि राष्ट्र की प्रगति का आधार किसानों की शक्ति है। उन्होंने कहा कि भारत दुग्ध, दाल और जूट के उत्पादन में विश्व में नंबर एक है।
आज भारत चावल, गेहूं, कपास, फल और सब्जी के उत्पादन में नंबर टू पर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर भी है। पिछले साल भारत ने अब तक का सबसे ज्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया है। ऑयल सीड्स में भी हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। सोयाबीन, सरसों, मूंगफली सभी का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है।
गृहमंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में देवी सीता के मंदिर के निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगे। मंदिर और उसके आसपास के परिसर निर्माण पर अनुमानित 883 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार सरकार ने मंदिर के निर्माण के लिए 50 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का फैसला किया है। इस अवसर पर श्री अमित शाह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे सीतामढ़ी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीतामढ़ी नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सीतामढ़ी जिले के लोगों ने पुनौरा धाम में जानकी मंदिर के शिलान्यास समारोह पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की।
माँ जगत जननी सीता की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का शिलान्यास हम जिले वासियों के लिए न सिर्फ आस्था बल्कि विश्व मानचित्र पर सीतामढ़ी को एक नई पहचान दिलाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री को हम सब धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद माँ जानकी के जन्म स्थल पर इस मंदिर निर्माण से हम जिले वासी प्रसन्न है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को हम सब की ओर से धन्यवाद एवं आभार।
भारत में इस वर्ष जनवरी से अप्रैल के बीच चिकित्सा प्रयोजनों के लिए 131,000 से अधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन FTA दर्ज किया गया है। ये इस अवधि के दौरान कुल FTA का लगभग 4.1% है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में ये जानकारी दी। एक रिपोर्ट।
पिछले 5 वर्षों में बांग्लादेश चिकित्सा पर्यटकों के क्षेत्र में शीर्ष केंद्र के रूप में उभरा है। इसके बाद इराक, सोमालिया, ओमान और उज्बेकिस्तान का स्थान है। पिछले वर्ष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए 6,44,387 लोग भारत आए थे, जो 2020 के 1,82,000 से अधिक की तुलना में बहुत ज्यादा है। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार चिकित्सा पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं तथा पहलों के माध्यम से इन प्रयासों को आगे बढ़ा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी हील इंडिया अभियान को बढ़ावा दे रहा है और चिकित्सा पर्यटन तंत्र को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र भागीदारी को बढ़ावा भी दे रहा है। उपचार के लिए विदेशों से आने वालों की सुविधा के लिए भारत सरकार ने 171 देशों के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा और ई मेडिकल अटेंडेंट वीजा सुविधाओं का विस्तार किया है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
उत्तर रेलवे ने कश्मीर घाटी में अनंतनाग रेलवे स्टेशन को माल परिवहन के लिए खोल दिया है। रेलवे ने कहा कि कश्मीर घाटी में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
कश्मीर घाटी में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर रोजाना सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर सभी प्रकार के माल और सामान को लाने ले जाने की सुविधा प्राप्त रहेगी। इससे कश्मीर से बागवानी, हस्तशिल्प और ताज़ा उपज के लिए बाजार तक पहुँचने को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय व्यवसायियों और व्यापारियों के लिए परिवहन लागत भी कम होगी। इसके अलावा मालगाड़ी की सुविधा से लॉजिस्टिक्स और तेज डिलीवरी में सुधार होगा, खासकर सर्दियों के दौरान जब सड़क परिवहन अक्सर बाधित होता है। स्थानीय उद्योग निकायों और निवासियों ने इस कदम का स्वागत किया है और इसे कश्मीर के आर्थिक विकास के लिए एक सामयिक और परिवर्तनकारी कदम बताया है। तारिक रातर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली हरसिल क्षेत्र में सेना, वायुसेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, राज्य पुलिस और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है।
जो यहाँ के धराली निवासी थे जिनका दुकान और घर और अन्य चीजों का नुकसान हो गया है परंतु उनके पास दूसरा अल्टरनेट नहीं, उन लोगों के लिए हमने कम्युनिटी किचन बना दिए हैं। ऐसे ही कम्युनिटी किचन हमने खर्चिंग में बनाया है SDRF के सहयोग से, और दूसरा अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। कच्चा राशन आ गया है और रेडी टू ईट फूड भी आ गया है दिल्ली से, तो उन दोनों का हम इसी समय अपनी डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल ही रहा है, हम नीचे भिजवा रहे हैं धराली।
उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी शिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के मेधावी छात्रों को ब्रिटेन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाने से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा कि ये प्रतियोगिता मेरा युवा भारत पहल के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या 12 हो गई है। कल 5 पुरुष मुक्केबाजों ने अपने अपने भार वर्ग में जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 55 किलोग्राम भार वर्ग में शिवम, 65 किलोग्राम भार वर्ग में मौसम सुहाग, 75 किलोग्राम भार वर्ग में राहुल कुंडू, 85 किलोग्राम भार वर्ग में गौरव और 90 किलोग्राम भार वर्ग में हेमंत सांगवान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 19 और अंडर 22 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप एक साथ आयोजित की जा रही है और भारत ने अंडर 22 वर्ग में भी 13 पदक पक्के कर लिए हैं। और फुटबॉल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने कल BSF FT को 3-0 से हराकर डूरंड कप में अपने सफर का शानदार समापन किया। वहीं नेरोका FC और इंडियन नेवी FT के बीच ग्रुप F में खेला गया मैच बिना किसी गोल के बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके अलावा विश्व में 5वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी और जर्मन ग्रैंड मास्टर विंसेंट कीमर ने चेन्नई में आयोजित क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की।
अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
धन्यवाद सिद्धार्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका के टैरिफ को लेकर दिए गए वक्तव्य को अधिकतर अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान लिखता है, पीएम ने दिया अमेरिका को संदेश, किसानों के हितों से समझौता नहीं। दैनिक जागरण के शब्द हैं, पीएम ने कहा किसान हित में बड़ी कीमत चुकाने को तैयार, जरूरत पड़ी तो व्यक्तिगत नुकसान भी सहेंगे। राजस्थान पत्रिका लिखता है, निजी छवि से ज्यादा देश हित को प्राथमिकता। देशबंधु सहित ज्यादातर अखबारों ने उत्तराखंड के धराली में आपदा के बाद चल रहे राहत कार्यों की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। मलबे के बीच फंसे लोगों की सकुशल वापसी के लिए सेना, वायुसेना, ITBP, NDRF, SDRF और प्रशासन की टीमें कर रही अभूतपूर्व प्रयास।
धन्यवाद सरफिरोजी समाचार पत्रों की सुर्खियों के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। श्री पुतिन शीघ्र ही भारत आएंगे। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कहा, शपथ पत्र पर शिकायत दर्ज कराएं या फिर झूठ फैलाना बंद करें। कश्मीर के अनंतनाग रेलवे स्टेशन से माल परिवहन सेवा शुरू। और 5 भारतीय मुक्केबाज बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।